राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल प्रेमानंदे जय ओम नितलीला प्रवेश विष्णुपाद परिवार जकाचार्य अष्टोत्तर His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupad Maharaj Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Sri Prabhupad Maharaj Ki Jai. Jai Om Nitalila Pravish Vishnupad Privarjaka Acharya Ashtotarshat. Tridandi Sanyasi Bhakti Siddhanta Sarsati Thakur Prabhupad Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavrand Ki Jai. जय श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय विश्व मंगल पतित पावन हरिनाम संकीर्तन की जय विश्व हरिनाम सप्ताह की श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की सब वेद भक्त वृंद की निताई गौर हरि प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी हरे कृष्ण। तो भागवत के इस प्रातःकालीन सत्र में भगवत कथा अमृत का पान करने उपस्थित हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो श्रीमद् भागवतम कथा अमृत देव समाज को भी दुर्लभ था, देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। हालांकि देवता अमृत का पान करते हैं, द्रव्य अमृत पान करते हैं, लेकिन उन द्रव्य अमृत पान करने वालों को भी कृष्ण कथा अमृत दुर्लभ। जब उन्हें पता चला था कि महाराज परीक्षित को तक्षक के डसने से मृत्यु का श्राप प्राप्त हुआ है और महाराज परीक्षित अनशन पर बैठे हैं और कृष्ण कथा अमृत का पान सुखदेव गोस्वामी कराने वाले हैं, तो देवता अमृत लेकर आए थे, ये अमृत महाराज परीक्षित को पिला दो तो तक्षक का जहर नहीं चढ़ेगा, और इसके एवज में, इसके बदले में हमको ये कृष्ण कथा अमृत आप स्वर्ग में आकर सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी को ये सौदा बिल्कुल पसंद नहीं आया। जन्मे जैसे खा इनको भगाओ यार, जा कहां वो अमृत और कहां ये अमृत है। हालांकि स्वर्ग का अमृत भी दुर्लभ है, वो देवताओं को ही प्राप्त है, हम लोगों को प्राप्त नहीं है, और उनको प्राप्त करने के लिए बहुत पुण्य करना पड़ता है, बहुत पुण्य अर्जित होता है तब स्वर्ग का अमृत प्राप्त होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है। गुजराती में नरसिंह मेहता गाते हैं, पुण्य करी अमरापुर पाम्या, बहुत पुण्य अर्जित होता है तब स्वर्ग लोक प्राप्त होता है और वहां अमृत प्राप्त होता है। लेकिन उस अमृत का क्या प्रभाव है, जब वह अमृत हम पीते हैं उस पुण्य के प्रताप से हमको अमृत मिलता है, और जब वह अमृत का पान करते हैं तो हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, उस अमृत से पुण्य क्षीण होते हैं। लेकिन जब यह कृष्ण कथा अमृत भागवता अमृत का पान करते हैं तो हमारे पाप क्षीण होते हैं। श्रवणतम स्वा कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, और इससे जो पुण्य प्राप्त होता है तो वो अमोघ होता है, वो कभी क्षीण नहीं होता है। तो ऐसा यह कृष्ण कथा अमृत जो देवताओं को भी दुर्लभ, वह कृष्ण कथा अमृत भागवता अमृत हमें जो यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, निश्चित ये प्रभुपाद महाराज की जगत के जीवों पर असीम कृपा है कि इसको सुलभ कराया। तो प्रभुपाद महाराज के चरणों में इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हुए, आभार चुका तो नहीं सकते, आभार व्यक्त कर सकते हैं, प्रभुपाद महाराज का आभार व्यक्त करते हुए आइए हम आज भागवत के सत्र की तरफ चलते हैं। वैसे वर्तमान समय जो है हरिनाम सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, इसमें हमारे तीन महान आचार्यों का तिथि भी पड़ता है, विशेषकर नामाचार्य हरिदास ठाकुर जिनको नामाचार्य का पद प्राप्त हुआ, वे प्रतिदिन 300,000 नाम जप करते थे और बहुत ही विलक्षण अद्भुत तरीके से उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया। इतिहास में ऐसा देह त्याग मात्र दो व्यक्तियों को प्राप्त हुआ, पितामह भीष्म और हरिदास ठाकुर। इच्छा मृत्यु वरदान, हरिदास ठाकुर ने भी अपनी इच्छा से शरीर को त्यागा, हालांकि चैतन्य महाप्रभु के चरणों में उन्होंने विनती किया। तो पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, हरिदास ठाकुर को कोई वरदान नहीं था, लेकिन उन पर चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा थी और उनका हरिनाम में पूर्ण श्रद्धा। तो उन नामाचार्य हरिदास ठाकुर का जो तेरो भाव तिथि है उसके उपलक्ष में सभी वैष्णव गण पूरे विश्व में ये पूरा सप्ताह हरिनाम सप्ताह के रूप में मनाते हैं। इसके पूर्व अगले दिन हमारे एक महान आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिन, दूसरे दिन हरिदास ठाकुर का तेरो भाव दिन, और तीसरे दिन प्रभुपाद का संन्यास लिया वो दिन। ये तीनों जो दिन हैं ये पूरे विश्व के लिए अति मंगलमय, बहुत मंगलमय है। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार किया, जो गौड़ीय वैष्णव धारा लुप्त तो होने जा रही थी उसको भक्ति विनोद ठाकुर ने पुनः जीवित किया। और नामाचार्य हरिदास ठाकुर तो उन्होंने तो नाम का प्रचार है बहुत। तो तीनों जो हमारे आचार्य हुए, इन तीनों का इस विश्व को पावन करने के लिए इस हरिनाम जो कलयुग का युग धर्म है, और हरिनाम संकीर्तन एक ऐसी वस्तु है जो इस जगत की हर समस्या का हल समाधान हो सकता है, और कलयुग के लिए तो विशेष। कलयुग कलह का युग है, आपस में कलह, भाई भाई में कलह, परिवार में कलह, देश देश में कलह, ये कलह प्रधान देश है। और इस कलह प्रधान देश में और कोई उपाय नहीं हो सकता हरिनाम संकीर्तन के सिवा। अगर आपके परिवार में कलह है, आपके समाज में कलह है, या आपको किसी संगठन के साथ कलह है, आप दावे के साथ ये कह सकते हैं कि उनके साथ बैठकर एक घंटा हरिनाम संकीर्तन कर दीजिए, आपका कलह समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। जिन परिवारों में या भाई भाइयों में नहीं बनता है, एक दिन भाइयों को बुलाकर खाली एक रूम में उनको बोलो कि संकीर्तन कर लो, बस आधा घंटा, कलह समाप्त हो जाएगा। और ये प्रत्यक्ष पूरा विश्व देखता है कि जब मायापुर में पूरे विश्व के कई काले गोरे अमेरिकन रशियन जो आपस में शत्रु हैं, वो जब एक साथ मिलकर जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो लगता है कि ये एक ही परिवार के हैं, दो के नहीं, या एक ही देश के हैं, या एक ही, ये एक ही हैं, दो हैं ही नहीं, बिल्कुल जैसे अमेरिका और रशिया तो शत्रु हैं। तो ये हरिनाम संकीर्तन पूरे विश्व के लिए मंगलकारी है हर तरह से। हालांकि कुछ भक्तों का मत है कि भौतिक किसी लाभ के लिए हरिनाम नहीं करना चाहिए, लेकिन भौतिक समस्याएं भी इससे नष्ट हो जाती। आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम तो प्रदान करने वाला है ही, लेकिन भौतिक समस्याओं का भी हल इससे हो सकता है। तो इस प्रकार हरिनाम जो ये सप्ताह है, भक्ता बहुत ही भक्त लोग उत्साह से इसका आयोजन किए हैं। कल मीरा रोड में भी हुआ, आज भाईंदर में होगा। भाईंदर जो हमारे राधा गिरधारी का जन्म स्थली है, है? और बहुत ही एक थोड़ी समन्वय लीला है वहाँ की, कि जैसे भगवान कृष्ण मथुरा में जन्म लिए और जन्मस्थली से रात को 12 बजे भाग कर गए, तो राधा गिरधारी भी वहां से 12 बजे भाग कर आई। कोई कह सकता है कि वहां तो कंस का भय था, वहां भी एक कंस था। तो ये लीला स्थली जहां है वहां पर हम इस हरिनाम संकीर्तन का प्रारंभ करेंगे और पूर्णाहुति भी करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि 5 बजे आइए। और भी उस स्थान का एक विशेषता है, मैं आपको बता दूं, हमारे राधा गिरधारी मंदिर के जितने भी सीनियर वैष्णव हैं, गुड़ाकेश प्रभु, लोहिताक्ष प्रभु, मधुसूदन प्रभु, या मैं भी, और भी जितने सीनियर भक्त हैं, भूगर्भ प्रभु, बाल गोविंद प्रभु, ये सब सीनियर भक्तों का भक्ति लता का बीज उस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो उस स्थान का बड़ा महत्व है। तो आप सभी आइए और इसमें सहयोग कीजिए। तो हरिनाम सप्ताह के बाद आइए, आज हम भागवतम के प्रसंग पर अग्रसर होते हैं। ये जो भागवतम का प्रसंग चल रहा है, बहुत ही उत्कृष्ट उच्च कोटि का प्रसंग है ये। हालांकि इसके लिए बहुत समय चाहिए, ये जो श्लोकों की व्याख्या है बहुत, मतलब कृष्ण प्रेम से लबालब छलक रहा है इस प्रसंग में, कृष्ण प्रेम छलक रहा है। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो किस प्रकार कृष्ण के दो पिताओं के बीच में जो व्यवहार है उसमें मात्र कृष्ण प्रेम सेंटर बिंदु, और किस प्रकार उनके व्यवहार में, उनकी भावनाओं में, उनके वाणी में एकमात्र कृष्ण प्रेम छिपा हुआ है। ये ऐसा प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग, दो कृष्ण के पिताओं का मिलन। तो आइए समय का तो अभाव है, 9 बजे प्रारंभ करेंगे तो कब तक चलेगा? 10 बजे तक चलेगा? आधा घंटा तो प्रभु जी मंगलाचरण उसमें जाएगा, इसका कुछ 8 बजे प्रारंभ कराना चाहिए संडे को। क्या प्रसंग जब अधूरा रह जाता है तो करेंगे इसके लिए कुछ कोशिश। आज चलते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 5 और श्लोक संख्या 24। दृष्टया चक्रे अस्मिन् वर्तमान पुनाभव उपलब्ध भवान अध दुर्लभम प्रियदर्शनम। दृष्टया संसार चक्रे अस्मिन् वर्तमान पुनर्भव उपलब्धो भवान अध दुर्लभम प्रियदर्शनम। दृष्टया संसार चक्रे अस्मिन् वर्तमान पुनर्भव उपलब्धो भवान अध दुर्लभम प्रियदर्शनम। दृष्टया संसार चक्रे अस्मिन् वर्तमान पुनर्भव उपलब्धो भवान अध दुर्लभम प्रियदर्शनम्।
दृष्टया संसार चक्रे अस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः उपलब्धो भवान् अद्य दुर्लभं प्रियदर्शनम्। दृष्टया संसार चक्रे
माताजी माताजी
दृष्टया संसार चक्रे
दुर्लभम प्रियदर्शनम्।
दृष्टया संसार चक्रे
उपलब्धो भवान् अद्य
दुर्लभम प्रियदर्शनम्।
शब्द अर्थ इस प्रकार हैं, दृष्टया सौभाग्य से ही संसार चक्रे अस्मिन् इस जन्म मृत्यु वाले जगत में वर्तमान विद्यमान होकर पुनः भव आपकी मेरी भेंट दूसरे जन्म की तरह है, उपलब्ध मेरे द्वारा प्राप्त होकर भवान आप अध आज दुर्लभम यद्यपि इसे कभी घटित नहीं होना था, प्रिय दर्शनम हे मित्र आपको पुनः देखने के लिए। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। यह मेरा सौभाग्य ही है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूं। इस अवसर को प्राप्त करके मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैंने फिर से जन्म लिया हो। इस जगत में उपस्थित रहकर भी मनुष्य के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों तथा प्रिय संबंधियों से मिल पाना अत्यंत कठिन है। चूंकि कंस ने वसुदेव को बंदी बना रखा था, इसलिए मथुरा में होते हुए भी वे अनेक वर्षों तक नंद महाराज का दर्शन नहीं कर सके थे। अतः जब वे फिर से मिले तो वसुदेव ने इस मिलन को दूसरा जन्म बताया। ओम अज्ञानतिमिरंभस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाली पाश्चात्यदेशकाय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। अजानुलंबित भुजो कनकावधातो संकीर्तन एक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो दिजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी द्वारा उच्चारित यह श्लोक दृष्टवा संसार सत् चक्रे अस्मिन् वर्तमान पुनर्भव उपलब्धो भवान् युद्ध दुर्लभम प्रिय दर्शनम। इस शीर्षक का नाम है नंद महाराज और वसुदेव की भेंट। बहुत हम सुनते आए हैं कि नंदो उत्सव के बाद की यह घटना है। जब अष्टमी के दूसरे दिन नंदो उत्सव मनाया जा रहा था, उस समय नंद घैर आनंद भयो, नंद घैर ही नहीं पूरे ब्रज में आनंद छा गया था। पूरा ब्रज दुल्हन की तरह सजा धजा था और सभी गोपियां गोप बहुत ही आनंद में थे। इसका वर्णन आप सुन चुके हैं और यह उत्सव कई दिनों तक चला। वैसे तो महामना नंद महाराज ने इस उत्सव को बड़े हर्षोल्लास से मनाया और दिल खोल कर दान दिया। इतना दान दिया गया कि उनके दान को पाकर सभी ब्राह्मण ब्रजवासी तृप्त हो गए। हालांकि ये बहुत दुर्लभ बात है कि इस संसार में कोई धन से तृप्त होता है। ऐसा बताया गया है कि कुबेर जी भी अपना धन लुटाने लगे तो इस संसार में कोई तृप्त नहीं हो सकता। लेकिन नंद महाराज ने इतना दान दिया था कि सबको तृप्त कर दिया। महामना महान मन वाले दिल खोल कर दान दिया था। और जात कर्म उत्सव जात कर्म संस्कार कृष्णा का मनाया गया। ये 16 संस्कारों में एक महान विशेष संस्कार है, नामकरण संस्कार। कई पटु ब्राह्मणों को बुलाया गया, स्वस्तिक वाचन किया गया, यज्ञ होम किए गए, दक्षिणा दी गई और इस प्रकार ये जात कर्म उत्सव मनाया गया। जात कर्म उत्सव से जैसे कुछ कुछ ऐसे क्रियाएं हैं जिससे शुद्धिकरण होता है। जात कर्म उत्सव से जन्म का शुद्धिकरण होता है। विशेषकर जो गर्भ में शिशु रहता है तो गर्भ के दोष से कुछ मलिनता उसमें आती है और इसके कारण जात कर्म संस्कार जब किया जाता है तो इससे वो शुद्ध हो जाता है। हालांकि कृष्ण के लिए ये बात लागू नहीं होती है, वो भगवान है और भगवान जिसके भी गर्भ में रहे, चाहे देवकी के गर्भ में हो या यशोदा के गर्भ में, वो कोई साधारण उनका देह नहीं है। देवक्या देव रूपिणी, देवकी या माता यशोदा का जो देह है वो भी सच्चिदानंदमय है। लेकिन वात्सल्य प्रेम के कारण नंद महाराज ने अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए, पुत्र के हर प्रकार से मंगल कामना के लिए यह उत्सव किया। तो जात संस्कार करने के, जात कर्म संस्कार से, इस संस्कार से जन्म की शुद्धि होती है। जन्म की ही शुद्धि नहीं, उस शिशु का आयु भी बढ़ता है और उसका मेघा भी बढ़ता है जात कर्म संस्कार से। जैसे कुछ बताया गया है कि जैसे दान से धन की शुद्धि होती है, तपस्या से इंद्रियों का शुद्धि होता है, और हरिनाम संकीर्तन से आत्मा का शुद्धि होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भक्ति से, कथा श्रवण से, नाम संकीर्तन से, नाम जप से आत्मा का शुद्धि होता है। इस संसार में जो सारा गड़बड़ है, सारा कले, सारा जो कलमश है, ये आत्मा की अशुद्धि के कारण है। तो आत्मा का शुद्धि के लिए हरिनाम संकीर्तन मूल उपाय है। इस प्रकार कुछ क्रियाओं से कुछ सिद्धि होता है। तो जन्म का जो शुद्धि होता है वो जन्मजात संस्कार से होता है। वह विधि नंद महाराज ने संपन्न किया और ये जन्म उत्सव मनाया गया। बहुत आनंद छाया हुआ था, बिल्कुल प्रसिद्ध हो गया नंद घेर आनंद भयो। नंद का अर्थ ही आनंद देने वाला होता है, लेकिन उनको भी आनंद हुआ। और ये उत्सव मनाया जा रहा था, तब तक तो नंद महाराज सब उत्सव मना रहे थे, बहुत भव्य तरीके से ये उत्सव मना। लेकिन नंद महाराज के मन में थोड़ा सा शंका होने लगा। वो एक जगह बैठकर विचार करने लगे कि ये जो आनंद मैं मेरे पुत्र प्राप्ति का आनंद मना रहा हूं, इसमें गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि वर्तमान समय में जो कंस है, इसकी सरकार है, इसकी सत्ता है, अगर इसको ठीक से खुश ना कर दिया जाए तो ये हमारे आनंद में विक्षेप कर सकता है या कुछ गड़बड़ हो सकता है। इस प्रकार नंद महाराज विचार कर रहे थे। तो राजा को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए? राजा एक ऐसी सत्ता है कि आपके पास भले धन है, सिद्धि है, कुछ भी है, आपका बहुत बड़ा नाम है, कुछ भी है, लेकिन सरकार जो राजा होता है वो आपकी सारी खुशियों को नष्ट कर सकता है। भले आपके पास कितना धन है, लेकिन अगर सरकारी पुलिस आके पकड़ लिया या कुछ गड़बड़ जेल में डाल दिया, करोड़ों करोड़ों अनुयायी हैं, करोड़ों करोड़ों नाम है, सरकार ने जेल में डाल दिया, सारा खुशी समाप्त, कैदियों की लाइन में खड़े रहकर खाना खाओ। क्यों? सरकार अनुकूल नहीं है। सरकार अगर अनुकूल रहती है, राजा प्रसन्न हो, तो हमारी खुशी बनी रहती है। इसलिए नंद महाराज भी बहुत विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। तो इसके लिए नंद महाराज ने विचार किया कि कंस का जो वार्षिक कर है वो दे दिया जाए, जिससे सरकार को टैक्स मिल जाता, सरकार खुश। लेकिन यह ऐसा है कि जो कंस का कर, कंस वहां का मेन राजा था और ये उनके अधीन राजा थे नंद महाराज। हालांकि नंद महाराज इसके पूर्व कभी कर चुकाने नहीं गए मथुरा, कभी नहीं जाते थे मथुरा। से सरकारी आदमी आता था और कर वसूल करके ले जाता था। और नंद महाराज ऐसे व्यक्ति थे, पूर्ण विरक्त व्यक्ति थे, उनमें इस संसारिक विषयों में आसक्ति भी नहीं था। कर देना है या राजा को प्रसन्न करना है या ये राज चलाना है या ऐसा, इसमें कोई रुचि नहीं था। हालांकि नंद महाराज ने जो राज्य, नंद महाराज को ब्रज का जो राजा बनाया गया, तो वो भी अपनी इच्छा से नहीं बने थे। थोड़ा सा ये प्रसंग सुना, जैसे देवमीड़ जो थे, देवमीड़ वहां ब्रज के राजा थे और उनके पुत्र हुए परजन्य। परजन्य के दो पत्नियां थी, एक वेश्या थी और एक क्षत्रियाणी थी। तो क्षत्रिय से महाराज सूरसेन हुए और जो वेश्य पत्नी थी उससे नंद महाराज नहीं सूरसेन हुए, सूरसेन के पुत्र वसुदेव। सूरसेन जो थे वो क्षत्रियाणी के पुत्र थे और नंद महाराज जो थे ये वेश्य के पुत्र थे। तो ऐसे दोनों भाई लगते थे, पितृ भाई थे, वसुदेव और नंद महाराज भाई थे। और नंद महाराज जो सूरसेन के ये वेश सत्राणी के पुत्र थे, परजन्य के सॉरी, तो इनके पांच पुत्र हुए। कुछ गड़बड़ है, पांच पुत्र हुए, इनके पांच पुत्र थे। परजन्य ने वर्यसी नामक एक पत्नी थी और उनसे पांच पुत्र उत्पन्न हुए। उपनंद बड़े थे, अमिनंद, नंद, ये नंद महाराज तीसरा नंबर, तीसरे पुत्र हैं, सुनंद और नंदन, पांच पुत्र हुए। तो समझो नंद महाराज जो तीसरे नंबर पर हैं, तो राजा वो नहीं बन सकते, राजा तो उपनंद बनेंगे, उपनंद सबसे बड़े हैं। तो परजन्य जब वृद्ध हो गए तो राजपाट त्याग कर वो भजन के लिए जाना चाहते थे, भजन करना जीवन का उद्देश्य है। तो अपने ज्येष्ठ पुत्र उपनंद को, महाराज उग्रसेन इत्यादि को बुलाकर उनके सभा में उपनंद को राजा घोषित किया ब्रज का। लेकिन उपनंद भी इतने वैरागी थे और नंद महाराज सबके इतने प्रिय थे कि उपनंद ने उस सभा में खड़े होकर कहा कि मेरी एक विनती है उग्रसेन महाराज से भी कि नंद जो है ये सबका प्रिय है और ये योग्य भी है, इसलिए ब्रज का राजा इनको बना जाता है। ये कैसे भाई है, कितना बड़ा त्याग है, भाई भाई की हत्या कर देता है राज के लिए। कंस ने राज के लिए अपने पिता को जेल में डाल दिया, लेकिन यहां भाई के लिए त्याग, त्याग राज्य का त्याग, इनको राजा बना दिया जाए और मैं इनके अधीन कार्य करूंगा। तो इस प्रकार जब उपनंद ने कहा तो वहां उपस्थित सभी गोपगण वहां वहां करके इस बात को स्वीकार किया, इसका अनुमोदन किया, क्योंकि नंद महाराज इतने प्रिय व्यक्ति थे, स्वभाव से गुण से श्रील स्वभाव था और पूर्ण विरक्त व्यक्ति भी थे। तो इस प्रकार उस सभा में नंद महाराज को राजा बना दिया गया और नंद महाराज ने भी एक अपने बड़े भाई की आज्ञा समझकर और अपने दादा परजन्य की आज्ञा समझकर उसको पद को स्वीकार किया था। हालांकि नंद महाराज उसमें बिल्कुल आसक्त नहीं थे, इसलिए कभी भी टैक्स भरना है या क्या करना है राजपाल इतना वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे। उनका पूरा मति भगवान नारायण में लगा हुआ, वैरागी पुरुष थे, परम वैरागी थे। तो आज अचानक ये क्यों सोच रहे हैं कि राजा का कर देना है, कर चुकाना है? तो अब नंद महाराज जो पूर्ण वैरागी थे उनको भी संसार के विषयों में थोड़ा थोड़ा अनुराग आने लगा। ये आचार्यों का इतना क्यों आने लगा, परम वैरागी थे, क्योंकि जो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है तो पुत्र की सुरक्षा के लिए कहीं ऐसा ना हो कि कंस हमको राजपद से हटा दे। अभी राजपद में रहने के लिए उनका इच्छा है, अब आ सकती है, कहीं राजपद से मैं हट गया तो मेरा पुत्र का लालन पालन और ये ठीक वो साधारण हो जाएगा। अगर मैं राजा बना रहा तो मेरे पुत्र का लालन पालन भी राज ठाटपाट से होगा। तो अपने लिए आ सकती नहीं, अपने पुत्र के लिए आ सकती। फिर प्रश्न होता है तो पुत्र में आसक्ति, ये तो बंधन का कारण है। ये क्या नंद महाराज पुत्र में इतने आसक्त हैं? पुत्र आसक्ति तो ठीक नहीं है। एक भक्त लिखते हैं कि नंद महाराज पुत्र के पिता नहीं है। इस संसार में जो हम लोग पुत्र के पिता होते हैं, नंद महाराज पुत्र के पिता नहीं। नंद महाराज जगत के पिता हैं, पुत्र के पिता नहीं है। और उसमें आसक्ति है तो जगत के पिता हैं, उनमें तो आसक्ति हो ना। भाव पुत्र का है, वात्सल्य है, लेकिन है तो वो जगत के पिता वात्सल्य भाव है। तो इस प्रकार कृष्ण अभी देखिए ये प्रसंग में सीधा उनमें जो राज्य में जो आसक्ति हुआ कि राजा को प्रसन्न करना है, कर चुका देना है, जिससे मैं राजा भी बना रहा हूँ, सरकार की हमारे पर कृपा दृष्टि रहे और जिससे हमारा पुत्र का लालन पालन ठीक हो, एक एक प्रसंग यह है। दूसरा प्रसंग ऐसा भी है कि वसुदेव जी जानते थे कि मैं मेरे पुत्र को वहां रख आया हूं, और जब से देवी ने कंस को यह बताया कि तुमको मारने वाला अत्र कबो वा, वो जन्म ले चुका है कहाँ, तो अत्र कबो वा, अत्र कौम वा, अत्र कौम वा का अर्थ यहीं कहीं। तो उसमें देवी जी झूठ नहीं बोली, वो समझ नहीं पाया, लेकिन यहीं कहीं मतलब यहीं कहीं में यही भी शामिल है, वो जन्म ले चुका है। कंस समझ नहीं पाया, कंस इतना ही समझा, विस्मृत हुआ, और कंस इतना ही समझा कि देवम अप्य अनृतम वक्ति न मृत्या केवलम, ऐसे ऐसे शब्द हैं भागवत। देव अप्य अनृतम कृतम वक्ति, देवता भी झूठ बोलते हैं, न मृत्य केवलम, खाली मनुष्य ही झूठ बोलते हैं ऐसा नहीं है, देवता भी झूठ बोलते हैं। मतलब इनका देववाणी हुआ था कि इसका आठवां पुत्र होगा, ये तो पुत्री हुई है, देवता भी झूठ बोलते हैं। झूठ देवता नहीं बोलते, झूठ मात्र मानव मनुष्य बोलते हैं, देवता झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन इसको जानकारी न होने के कारण वो ऐसा बोलता है। कुछ लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, कुछ उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए बोलते हैं शास्त्र में ऐसे लिखा गया, शास्त्र में ऐसे नहीं लिखा गया, परम सत्य है। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं। और ये देखिए कंस कितना झूठ बोलता है इसी श्लोक में कि अब अपना पाप देवताओं पर ढोलने के लिए देवकी से कहता है कि ये देवताओं पर की वाणी पर मैं विश्वास करके तुम्हारे छह पुत्रों की हत्या किया, इसका कारण ये देवताओं ने झूठ बोला। देवताओं की वाणी पर विश्वास किया तो तुम कैसे इतना पाप किया? देवताओं ने तो कहा था कि इसका आठवां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा, तो फिर तुम कैसे ये बात के नहीं नहीं हत्या नहीं करने दूंगा, मैं इससे बच जाऊंगा। तो तुमको देवताओं की वाणी पर श्रद्धा नहीं था ना। तो क्या जो भी हो, ये तो बहुत लंबा प्रसंग है, इस पर अगर चर्चा करेंगे तो और दो घंटा जाएगा। तो जब कंस को ये बात, तो कंस देवकी के सामने तो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, बहुत सुंदर भगवद गीता के दूसरे अध्याय का प्रवचन भी किया, और फिर घर गया। तो घर जाकर ये सब बात मंत्रियों को बताया, तो मंत्रियों ने सलाह दिया, ये छह पुत्र मारने के लिए वहां रोया और गिड़गिड़ाया, मैं नरभक्षी राक्षस हूं, यहां तक बोला। वहां जाकर मंत्रियों से मंत्रणा किया, तो मंत्रियों ने कहा, क्या कहा देवी ने? देवी ने कहा कि हमको मारने वाला यही कहीं जन्म ले चुका है। तो क्या अंदाज है? अंदाज है कि यही कुछ 10-15 दिनों में जन्म लिया, ऐसा देवी जी के बहन ने बोलने पर लग रहा था। देवी जी का वो उपासक था, हैं? और देवी जी का उपासक होने के कारण ही वो समझा कि ओह देवकी महान है, क्योंकि देवकी के गर्भ से दुर्गा जी जन्म लिया, देवकी साधारण नहीं है। और भगवान जन्म लेने वाले हैं, विष्णु जन्म लेने वाले हैं, तो देवकी महान नहीं है, ये असुरों का मत, असुरों का ऐसी बात है। असुर प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि विष्णु तो साधारण है, देवी जी महान है। वो देखिए असुरी प्रवृत्ति, विष्णु जन्म लेने वाला है तो देवकी को मार डालूंगा, और दुर्गा जी जन्म ली तो देवकी के चरणों में गिर गया। तो इस प्रकार घर मंत्रियों से मंत्रणा किया, तो मंत्रियों ने बताया तो ठीक ऐसा करते हैं, आप चिंता मत कीजिए, 10 दिन में जितने बालक जन्म लिए सबको मार डालते हैं। तो किसी गुप्तचर के द्वारा इस मंत्रणा का पता वसुदेव जी को लग गया। तो अब वसुदेव जी सोच रहे हैं कि क्योंकि वसुदेव जी को पता है कि मैं मेरा पुत्र रख कर आया और वहां उत्सव हो रहा है, तो वसुदेव जी ने सोचा कि यहां मथुरा से कोई व्यक्ति गोकुल ना जाए, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, हमारे पुत्र पर संकट आ सकता है, नंद महाराज पर संकट आ, इसलिए ऐसा एक हरिवंश में या हमारे आचार्यों ने भी एक बुक में लिखा है कि वसुदेव जी इस प्रकार विचार करके उन्होंने कहा कि नंद महाराज को समाचार भेज दूं कि यहाँ का जो आपका कर बर है वो आप जाकर चुकता कर दो और कुछ कंस को प्रसन्न रखो। तो नवमी के दिन जब नंदो उत्सव मनाया जा रहा था, पूरा दिन नंदो उत्सव, और शाम के समय में वसुदेव जी ने अपने किसी अंतरंग व्यक्ति को चुपके से भेजा और उसने जाकर नंद महाराज को बताया कि वसुदेव जी ने कहा कि आप अपना कर तुरंत चुकता करो ताकि वहां से कोई व्यक्ति ना आए और कंस प्रसन्न हो, कंस बच्चों की हत्या कर रहा है ऐसा मंत्रणा हो गया है, तो पहले आप अपना कर चुकता कर लीजिए और कुछ कंस को प्रसन्न रखिए। तो नंद महाराज ने सोचा ठीक है मैं जाऊंगा कर चुकता करने, लेकिन अभी तो नंद उत्सव जो हमारे पुत्र को अभी अभी हुआ है तो ऐसे कैसे छोड़कर चला जाऊं। तो इस प्रकार नंद महाराज ने कहा ठीक है 4-5 दिन बाद चला जाऊंगा। तो नवमी के दिन ये समाचार मिला और ठीक 5 दिन बाद 14 को नंद महाराज अब ये सोच रहे कि अब कर चुका देना चाहिए। तो 5 दिन तक लगातार ये नंदो उत्सव चला, लगातार गोपियां घर का सारा काम करके कुछ ना कुछ लेकर वहां चली जाती थी, पूरा दिन यही कार्य चलता था, आना जाना, कृष्ण को देखना, भेंट अर्पण करना, ये बस कृष्ण कथा चालू हो गई। तो इस प्रकार 5वें दिन नंद महाराज बैलगाड़ी तैयार किया और कुछ गोपों को साथ में लिया, घी दूध दही और कई अलंकार और सोना मोहर ये सब लाद कर, सोना मोहर और खजाना भी नंद महाराज के पास जितना है पूरे पृथ्वी में किसी के पास नहीं इतना खजाना, क्योंकि साक्षात रमा, साक्षात लक्ष्मी का यह विहार स्थली बन गया, रमण स्थली बन गया, साक्षात लक्ष्मी जी अब यहाँ रमण करने वाले हैं। तो बहुत धन था उनके पास, धन स्वतः हो गया। इस प्रकार लाद कर पूरा बैलगाड़ी भर दिया और कुछ बलवान गोपों को वहाँ पर वहाँ का जवाबदारी सौंप कर कि आप ध्यान रखना कुछ अनिष्ट न हो पावे, और कुछ ग्वाल गोपों को साथ में लेकर वे वहाँ से कंस के यहाँ कर देने के लिए निकले। तो कर देने के लिए गए और तुरंत जाकर कंस के महल में गए और जाकर कर प्रदान कर, कर तो जल्दी जल्दी ले लेते हैं, सरकार को आपको टैक्स देना है तो सरकार के कुछ बचता है और रिफंड लेना है तो आपका नाक में दम आ जाता है, लेकिन अब लेना है तो फटाफट, कोई भी सरकार में आपको देना है फटाफट होता है, लेकिन सरकार से कुछ लेना है 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा मृतकों को तो देखिए कितना दम, बुढ़ा हो गया आदमी मर जाता है लेकिन वो अभी तक नहीं आता है, लेकिन यहाँ देना था इसलिए तुरंत फटाफट काम हो गया, काम फटाफट पट गया और तुरंत ही कर देकर बहुत सारा अलंकार भी दिया, वस्त्र भी दिए, दूध घी भी भेंट किया और कंस बहुत प्रसन्न हो गया, कंस प्रसन्न हो गया नंद महाराज पर। और इस प्रकार देकर नंद महाराज तुरंत एक बगीचे में पार्किंग में आकर अपना बैलगाड़ी पार्किंग कर दिया। इस जब नंद महाराज वहां आए तो इसका समाचार वसुदेव जी को मिल गया कि नंद आए हैं। तो ये समाचार सुनकर ही वसुदेव जी की उत्कंठा हो रही थी नंद महाराज से मिलने की, लेकिन नंद महाराज गोकुल से यहां आए हैं और अब मिलना है, तो वसुदेव जी भी विचार करने लगे। उधर नंद महाराज भी आए हैं तो नंद महाराज की भी उत्कंठा है वसुदेव जी से मिलने की, लेकिन वसुदेव जी अपने घर पर हैं, नंद महाराज बगीचे में रुके, नंद महाराज वसुदेव जी के घर नहीं जा रहे, हालांकि वो प्राणों से भी प्रिय है, नंद महाराज का वसुदेव जी से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम करते थे, वैसे मैंने सुना कि कई भक्तों ने भाई भाइयों के प्रेम पर बहुत व्याख्या किया। इस संसार में भाई भाइयों जैसा प्रेम भी नहीं है और भाई भाइयों जैसी शत्रुता भी नहीं है, ये दोनों बातें हैं। झगड़ा भी भाई के साथ जो होता है वो किसी के साथ नहीं होता है, ऐसा झगड़ा। देवासुर संग्राम है तो वो भी भाई भाइयों का है, महाभारत है तो वो भी भाई भाइयों का है, ये दो बड़े संग्राम भाई भाइयों के हैं। इस विश्व इतिहास के सबसे बड़े दो संग्राम भाइयों में हुए, लेकिन भाइयों का प्रेम भी है वो भी और सराहनीय। भाई भाइयों में प्रेम तो बहुत प्रेम था, लेकिन अब यहां विवशता देखिए। वसुदेव जी नंद महाराज को बुलाए नहीं। अब कोई आपका आदमी और समाचार मिल जाए कि आपका भाई मथुरा में आया तो वसुदेव जी को बुलाना चाहिए, घर पे बुलाना चाहिए ना जब पता चल गया, लेकिन वसुदेव जी नहीं बुला रहे। उधर नंद महाराज भी नहीं जा रहे हैं, नंद महाराज को जाना चाहिए वसुदेव जी के घर, तो वो क्यों नहीं गए? नंद महाराज ने सोचा कि वसुदेव बहुत विपत्ति में है, उसने बहुत दुख भरे समय निकाला है, उसको अपने पत्नी के साथ राजबंदी बना लिया गया, उसके 6-6 पुत्र मारे गए, 7वां गर्भ कंस ने कोई भी मंत्र तंत्र से या कुछ भी करके नष्ट कर दिया, 8वीं एक पुत्री हुई तो वो भी आकाश में उड़ गई। ये नंद वसुदेव और देवकी बहुत दुखी, बहुत दुखी है। इस संसार में इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? अब मैं उनके घर जाऊंगा तो उनके इस इतने बड़े दुख है और मैं जाकर वापिस 2 मिनट में या 5 मिनट में या 1 घंटा में वापिस लौट जाऊं, ये ठीक नहीं। उनके घर जाना, उनको सांत्वना देना, बहुत सा ढांढस बताना, और इसके लिए मुझको समय लग सकता है। अगर वसुदेव या देवकी कहें कि भैया रुको, आप आए हैं हमारे दुख में शामिल, तो मैं कैसे कहूँगा नहीं मैं नहीं रुक सकता? ऐसा नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं रुक सकते? क्योंकि अब कृष्ण अपने पुत्र की अत्यधिक याद आ रही है। मेरे पुत्र को देखे बिना कृष्ण को देखने की जो लालसा है उसके अंदर भातृ प्रेम थोड़ा सा नरम हो रहा है। कृष्ण देखने की लालसा, पुत्र को वो सुबह आ गया था, शाम तक पुत्र को देखा नहीं। पुत्र में कितनी लालसा है पुत्र प्राप्त करने की, पुत्र को देखने की। तो कृष्ण को देखने की और कृष्ण की सुरक्षा उत्पाद भी हो सकते हैं, क्या हो रहा होगा, मेरा पुत्र कैसा होगा, ब्रज में गोकुल में क्या होगा, तुरंत मुझे गोकुल जाना चाहिए। तो यहां पर कृष्ण प्रेम, कृष्ण को देखे बिना रहना उनके लिए संभव नहीं है, मुश्किल है। और यहां भाई को भी मिलना है तो क्या करें, मैं उनके घर जाऊंगा तो वो रोक लेगा, बहुत दुख में दिन बिताए। यह विचार कर रहे हैं नंद महाराज बैठे बैठे, और इस विचार से मृत प्राण जैसे हो गए, क्या करूं, धर्म संकट जैसा हो गया। पुत्र को देखे बिना नहीं रह सकते हैं और भाई को मिलने बिना कैसे चला जा। ठीक है, नंद महाराज का तो यह प्रॉब्लम है, वसुदेव जी को घर बुला लेना चाहिए, तो वसुदेव जी भी घर पर नहीं बुला रहे हैं नंद महाराज। वसुदेव जी सोचा कि अगर मैं नंद को घर बुलाता हूं और कोई देख लिया, कंस का आदमी देख लिया कि ये नंद वसुदेव जी के घर क्यों गया, उसको भी पुत्र हुआ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये दोनों क्यों मिल रहे हैं? ऐसा वाक्य करते हैं कि अगर हमारा कोई धन या अमानत किसी के पास है तो उसको ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो शंका हो जाता कुछ है इनके बीच में। ऐसा हम देखते हैं कि जैसे ट्रेन में जाते हैं और जेब में 25-50 हजार रुपया है तो बार बार इधर ऐसा बार बार हाथ में, तो वो पॉकेट मार को पता चल जाता है कि ओह है, तो ऐसा बार बार। तो अगर हम नंद महाराज से मिलेंगे तो किसी को संशय हो सकता है कि ये क्यों मिले, तो हमारे पुत्र पर संकट आ सकता है, ऐसी मन में ये इसका कारण है कि आप भी अपने जीवन में देखते हैं कि जो हमारा प्रिय होता है उसके लिए हमेशा हमारे मन में अनिष्ट की भावना होती है। जैसे हमारा पुत्र है, एक ही पुत्र है, चर्च गेट गया है, रोज 10 बजे आ जाता है और एक दिन 11 बज गया तो लगता है घर तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया। कभी ऐसा विचार नहीं होता कि वो सुरक्षा आराम से आता होगा, ऐसा विचार नहीं आता है प्रिय के बीच में। ऐसा ही होता कि कुछ गड़बड़ हो गया, किसी ने भीड़ में गिरा दिया या कुछ हो गया या कोई क्या हुआ। हमारे प्रियजन के लिए हमेशा अनिष्ट विचार हमारे मन में आते। तो इस प्रकार वासुदेव जी के प्रिय कृष्ण प्रिय थे इतने कि अनिष्ट विचार आने लगा कि अगर मैं नंद महाराज को बुलाता हूँ और किसी को पता चला तो गड़बड़ हो सकता है, कंस जान सकता है हाँ, और इसके गुप्तचर के द्वारा पता चल सकता है तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वसुदेव जी भी मिलना तो बहुत व्याकुल है। तब वसुदेव जी ने सोचा कि ऐसा करता हूं मैं ही मिलकर आ जाता हूं, लेकिन वो इस प्रकार से गए कि किसी को पता ना चले, वो अलक्षित होकर गए थे, भेष बदल दिया था, भेष बदल कर गए। तो वसुदेव जी उनको मिलने के लिए गए। यह प्रश्न होता है तो देवकी को साथ में क्यों नहीं लिया? देवकी क्या नंद महाराज से नहीं मिलना चाहती थी? वसुदेव जी चुपके चुपके चले गए, देवकी को भी नहीं बताया हैं? देवकी का पुत्र उनके घर रह रहा है और नंद महाराज उसका पालन पोषण कर रहे हैं, और भले ये बलराम जी जो हैं रोहिणी वहां रह रही है, रोहिणी जी के पुत्र बलराम का, बलराम तो वसुदेव जी के पुत्र, उनका भी लालन पालन नंद महाराज कर रहे हैं, नंद महाराज से इतने घनिष्ठ संबंध हैं, और देवकी को साथ में नहीं लिया अकेले। तो वसुदेव जी ने यह सोचा कि मैं धीर हूं। वास्तव में वसुदेव जी बहुत धीर पुरुष थे, बहुत धीर पुरुष थे, ततच्च सौरी, बहुत धीर पुरुष थे। कृष्ण को ले जाना तो बहुत धैर्य रख कर ले गए थे। कंस देवकी को मारने वाला था, लेकिन उस समय भी वसुदेव जी धीर थे, प्रवचन करने लगे। ऐसे समय में कोई प्रवचन करता है क्या, शिक्षा देता है ऐसे कंस को? लेकिन बहुत धीर आशावादी, बहुत धैर्य रखते थे वसुदेव जी। धैर्य ये भक्ति का बहुत बड़ा लक्षण है, धीर, धीरा शब्द आया भागवत में, धीरा। जो भक्त होते हैं भगवान के, वो बहुत धैर्य धीर होते हैं, अधीर नहीं होते हैं। तो मैं तो धीर हूं, लेकिन देवकी माँ है और देवकी को पता है कि हमारा पुत्र वहां रखा गया है। देवकी जाकर माँ है रह ना पाई और नंद महाराज से पूछ लिया कि हमारा पुत्र कैसा है, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। माँ का वात्सल्य, माँ की ममता पिता से बहुत बढ़कर होती है और देवकी की ममता बहुत बढ़कर थी। जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गए थे तो देवकी बार बार कारागृह में मूर्छित हो रही थी, कृष्ण का याद करके मूर्छित हो जाती थी और रोती रहती थी। तो पुत्र के वियोग में देवकी का स्थिति वसुदेव जी जानते थे, और कहीं उसने वात्सल्य प्रेम में ममता के कारण पूछ लिया नंद महाराज को तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नंद महाराज को पता ना चलना चाहिए, और हो सकता है वहां पूछ ले तो दीवारों के भी कान होते हैं, ये पूछ लिया कि हमारा पुत्र कैसा है और कहीं ये बात वाया वाया कंस के पास चली गई तो हम चौपट, हमारा जीवन चौपट, हमारा प्रियतम मार डालेगा। मात्र कृष्ण प्रेम, नंद महाराज के अंदर भी कृष्ण प्रेम छलक रहा है, वसुदेव जी के अंदर भी कृष्ण प्रेम, बस कृष्ण प्रेम के अलावा इन दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं इस मिलन में। और इस प्रकार देवकी को साथ में ना लिया, कुछ भेष बदल कर वसुदेव जी गए। वसुदेव जी गए, वसुदेव जी आ रहे तो देख कर नंद महाराज खड़े हो गए एकदम, और ऐसे खड़े हो गए कि जैसे उनके प्रिय मतलब जान आ गई, संचार हो गया, चेतना का संचार, मृत जैसे विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। कृष्ण को देखे बिना हम नहीं रह सकते हैं और वसुदेव जी के भेंट किए बिना भी मैं कैसे जाऊं, तो इसका बिल्कुल धर्म संकट में पड़कर एकदम जैसे जान चला गया हुआ ऐसा हो जाता है आदमी, कभी कभी मायूस हो जाता है क्या करूं। तो जैसे मैं प्राण नहीं संचार हो रहा था, ऐसा मूर्ति जैसा होकर बैठ गए थे। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी को देखा तो उनके अंदर प्राण का संचार हो गया और खड़े हो गए। इसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तम दृष्ट्वा सहस उत्थाय देहे प्राण गातम आगतम। देह में प्राण आ गया, तो क्या प्राण चला गया था? देह में प्राण आ गया। और प्रीत प्रियतम दुर्भ्या, ये शब्दों पर वास्तव में प्रीत प्रियतम दोभ्यम। क्यों वसु नंद महाराज खड़े हो गए? क्योंकि उन्होंने अपने प्रियतम को देखा, प्रिय को देखा, या प्रिय और फिर प्रियतम। नंद महाराज ने अपने प्रिय वसुदेव जी को देखा और वसुदेव जी ने अपने प्रियतम को देखा। प्रिय प्रियतमम दोभ्या, हालांकि ये शब्द अभी समय नहीं है इसलिए इसका ज्यादा है। वसुदेव जी, नंद महाराज ने अपने प्रिय भाई को देखा और वसुदेव जी ने अपने प्रियतम को देखा। नंद महाराज, प्रियतम का अर्थ प्रिय और प्रियतम, प्रियतम का अर्थ होता है सभी प्रियों में श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ प्रियतम, प्रिय में सबसे प्रिय, ज्यादा प्रिय है तो प्रियतम है। ये तम शब्द मतलब सभी प्रिय, गुह्य गुह्यतम, सभी गुह्यों में श्रेष्ठ, तो प्रियतम। वसुदेव जी प्रिय थे और नंद महाराज भी प्रिय थे, लेकिन नंद महाराज प्रियतम, इसका दो कारण। एक तो उनके दो पुत्र वहां रह रहे, इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि वसुदेव जी के जो प्रियतम है वो वहां हैं इनके घर में, इसलिए नंद महाराज प्रियतम है, उनको बहुत प्रिय है, प्रियतम है उनके। प्रियतम वसुदेव जी के तो प्रियतम कृष्ण है, नंद महाराज के भी प्रियतम कृष्ण है और भाई प्रिय है। यहां एक बहुत बड़ा शिक्षा भी प्राप्त होता है कि संसार में सबके साथ प्रेम रखना चाहिए, सब प्रिय, सबके साथ प्रिय व्यवहार होना चाहिए, लेकिन कृष्ण के साथ प्रियतम, सबसे प्रेम व्यवहार रखना है, लेकिन जो हमारा सबसे श्रेष्ठ प्रेम है वो कृष्ण के प्रति प्रिय। कम से कम संसार के लोग ना रख पाए, लेकिन भक्तों को तो ऐसा होना चाहिए, कृष्ण से प्रिय ज्यादा और कोई नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बहुत ही इस संसार में रहते हुए बहुत अलक्षित वस्तु लगती है, बहुत इतना सहज नहीं है, कहना इतना आसान है, करना इतना सहज नहीं है, लेकिन फिर भी इस आदर्श को रखना चाहिए जीवन में। तो इस प्रकार वसुदेव जी के प्रियतम दो ब्या दोनों मिले और दोनों मिले, आलिंगन किया, दोनों का हृदय गदगद हो गया, दोनों के आंखों से अश्रु बहने लगे, दोनों के शरीर में रोमांच हो गया और गला रौंद गया, गले से कुछ बोला नहीं जा रहा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते प्रेम विहवल, विहवल का अर्थ होता है बस अब कुछ हो नहीं रहा है, सब में जैसे अनासक्ति, जैसे सब बोलने में वो ठीक नहीं है, बोल नहीं पा रहे हैं और कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं, बस आंखों से अश्रु और शरीर में पुलक रोमांच, ऐसा गले मिल आलिंगन, राम भरत मिला है, राम और भरत मिले तो उनका भी यही स्थिति है, भाई भाई का ऐसा मिलन होना चाहिए। अब तो कलयुग के प्रभाव से भाइयों में अभी कोई प्रेम रहा नहीं और छोटी छोटी बातों में भाई भाई का झगड़ा, भाई भाई का माया में इतना आसक्ति हो गया है लोगों का, हम लोगों का, कि भाई के साथ भी दुर्व्यवहार करने में हमको कोई लज्जा नहीं रहती, कोई हिचक नहीं होती, इस भाई से मैं थोड़ा ज़्यादा रख लूँ, ये भाई है ये उसका करेगा, ये नहीं कमाता है, इसको क्या। भाई भाइयों का प्रेम अगर शास्त्रों में इतिहास में देखेंगे तो त्याग, भाई के लिए त्याग, ये अब मात्र कथा बनकर रह गई, लेकिन ये हम देखते हैं कि भाई भाइयों का प्रेम कितना प्रेम है, बहुत प्रेम है, इतना प्रेम विह्वल, इतना प्रेम उमड़ आया कि वो विह्वल हो गए, बोला नहीं जा रहा है, गला गदगद हो गया, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है, कुछ देर तक वो ऐसे ही मूर्ति जैसे आलिंगन करके बने रहे। और उसके बाद कहते हैं पूजित सुखम आसीन। नंद महाराज ने वसुदेव जी का पूजा किया, पूजा का अर्थ है उनका सत्कार किया, उनका आगमन के लिए सत्कार किया। क्यों सत्कार किया? क्योंकि वसुदेव जी नंद महाराज के घर आए हैं। हालांकि मथुरा में वसुदेव जी का घर है, लेकिन अब जिस स्थान में नंद महाराज ठहरे हैं और वसुदेव जी वहां आए हैं, तो अब उनके घर आए हैं, ऐसा है। तो हमारे घर में कोई आया है तो उसका तो पूजा होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए है? तो सत्कार किया, सुखम आसीन, बहुत ही सुंदर आसन प्रदान किया। और प्रसक धी वसुदेव जी के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। अब दोनों बैठ गए तो अब वसुदेव जी की स्थिति का प्रसक्त धी प्रकृष्ट रूपेण आसक्ति, और धी धी का अर्थ बुद्धि। वसुदेव जी जब मिले तो अब वसुदेव जी के मन में अपने पुत्र के प्रति जो बहुत आसक्ति था, यहां पर कुछ आचार्य लिखते हैं कि वसुदेव जी का मन कृष्ण में था, ऐसी बात नहीं है। यहां पर धी लिखा गया, मन नहीं लिखा गया। मन और बुद्धि ये दो आसक्त होते हैं। कृष्ण में मन आसक्त था ऐसा नहीं, धी बुद्धि आसक्त था। मन आसक्त और बुद्धि आसक्त में क्या फर्क है? मन जो आसक्त होता है भगवान में, तो हम भगवान के गुण रूप लीला का चिंतन करते हैं, ये होता है मन आसक्त। और बुद्धि आसक्त का अर्थ होता है हम जैसे विचार करते हैं कि राधा गिरधारी का मंदिर कब बनेगा, कैसा बनेगा, किस प्रकार से डोनेशन लाना चाहिए, कैसे हम भव्य मंदिर बनाएं, और क्या क्या योजना करें, और क्या लगावें। जैसे हम हमारे घर में फर्नीचर करते हैं तो बुद्धि लगाते हैं, मन नहीं लगाते हैं। सोचते हैं यहाँ सोफा होगा और मार्बल नहीं, थोड़ा इटालियन मार्बल आ जाए तो लोगों में हमारी प्रशंसा होगी। इस प्रकार अगर हम कृष्ण के लिए विचार करते हैं तो उसको धीक, इसको बुद्धि लगाया कहा जाता। तो वसुदेव जी अब कृष्ण के लिए मन नहीं लगा, लेकिन बुद्धि लगाया कि वो कृष्ण कैसा होगा, उसका लालन पालन कैसे हो रहा होगा, या उसका लालन पालन मैं कैसे करूँगा, ये सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा कि कृष्ण का लालन पालन करना, उसको पढ़ाना लिखाना, उसको वस्त्र भेंट करना, ये सब। ये प्रसक्त थी, ये भागवतम के सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निकलने वाला ये जो अमृत है, वास्तव में भागवत श्रवण। कभी कभी हम भागवत श्रवण के विषय में सुनते हैं कि जो भागवत श्रवण करने की जो इच्छा कर लेता है तो कृष्ण उसके हृदय में बंदी बन जाते हैं। तो हम तो इच्छा करते हैं, कितने के हृदय में बंदी बन गए बताइए, तो हाथ उठाइए, तो हाथ उठाइए, हमारे मन में तो नहीं। लेकिन यहां सब बैठे हैं तो भागवत सुनने के लिए ही बैठे हैं ना। ऐसा कहा गया है कि जब घर से चलता है और सोचता है कि भागवत सुनना, उसी समय कृष्ण बंदी बन जाते हैं। और हम तो कई दिनों से आते हैं प्रार्थना, चलो भागवत क्लास में जाएंगे, लेकिन कृष्ण बंदी बने ऐसा कुछ लगता नहीं। बंदी नहीं बने इसका प्रमाण है कि बंदी बने इसका क्या प्रमाण है, नहीं बने इसका क्या प्रमाण है, लेकिन खैर उसका चर्चा नहीं करेंगे, समय बहुत हो रहा है। कृष्ण बंदी बना, भागवत सुनने का अर्थ है भागवत के शब्दों के मर्म को सुनना और उसका मनन करना। जब यह भाव होता कि ये शब्द क्या कह रहा है, प्रसक्त धी, ये प्रसक्त धी जो है ये बहुत ही भागवत के अमृत को उड़ेल रहा है। सुखदेव गोस्वामी के मुख से कृष्णा अमृत चूरा है, मतलब ये शब्द अमृत है, प्रसक्त धी। अरे क्या आसक्ति, कुछ लोग तो ये क्या प्रसक्त धी क्या, एक शब्द। राधा गोविंद महाराज कभी कभी एक प्रसंग का वाक्या करते हैं तो दो दो घंटा चलता है, तो व्यक्ति उठकर बाहर घूम के फिर आता है तो बोलता है अरे क्या अभी तक वही चल रहा है। लेकिन भक्तों में जब वो शब्द आता है या ऐसा कोई प्रसंग आता है तो उसमें वो अमृत जो पीते हैं, तो अब अमृत को कौन छोड़ेगा, वो उस शब्द को छोड़ना नहीं चाहते। जैसे ये शब्द है तो इस शब्द को छोड़ना नहीं चाहते हम लोग, प्रसक्त धी। ये शब्द का क्या रहस्य है? कृष्ण में मन लगाया नहीं है, कृष्ण में बुद्धि लगाया हुआ है, कृष्ण में बुद्धि लगा है। कि कैसे कृष्ण का लालन पालन किया जाए, कृष्ण कैसे होंगे, अब कृष्ण को मैं कैसे फिर से मिलेंगे, अब क्या करूं, नंद महाराज से बता भी नहीं सकता कि मेरा पुत्र कैसा है, अब कैसे पूछूं कि कृष्ण कैसा है, मैं ये कैसे कह दूं कि मेरा पुत्र। इसलिए जब हम देखते हैं इसके बाद का जो श्लोक है 23वां श्लोक, दृष्टया भ्रात प्रवयस इदानी प्रजस्यते प्रजा शाया निवृत्तस्य प्रजा यत समद्ध प्रजा। समय और ये दोनों है, लेकिन क्षमा करना मैं थोड़ा बोलूंगा, ये प्रसंग बहुत सुंदर है, क्षमा कर देना जो लोग मन में ऐसा सोच रहे हैं कि कब बंद करे बकवास कर रहा है। इस श्लोक में एक ही शब्द लूंगा, ज्यादा शब्द नहीं। अब जब अपने पुत्र के लिए पूछना है, लेकिन वो विवश थे, अपने पुत्र का समाचार पूछने के लिए विवश थे, पूछ नहीं पाए, इसलिए अब उनके पुत्र का समाचार कहकर पूछ रहे। लेकिन उनके पुत्र का समाचार भी पूछते हुए वे ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा पुत्र, तुमको पुत्र प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं बोले। दृष्ट्या भ्रात प्रवश, हे भाई आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको प्रजा प्राप्ति हुआ है, आपका बहुत उम्र हो चुका था, आपने कई कई प्रयास किए, पुत्रष्टि पुत्र प्राप्ति यज्ञ, ये भी प्रसंग बहुत बड़ा है, कई भक्तों ने सुना नहीं होगा, ये प्रसंग इतना बड़ा है कि महाराज नंद को पुत्र नहीं था, उन्होंने क्या क्या उपाय किए, द्वादशी का व्रत किया, उनको कृष्ण स्वप्न में आए, स्वप्न में नंद महाराज ने देखा कि एक श्याम कलर का रंग का बालक उनकी गोद में खेल रहा है, माता यशोदा ने भी ये सपना देखा कि वही बालक कभी कभी उनका स्तनपान कर रहा है। ये बहुत बड़े बड़े प्रसंग है, लेकिन हम समय बंधे हुए हैं, हमारे पास तो सत्संग में जाने के लिए समय नहीं, भक्त लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं, सत्संग के लिए हमारे पास कहां समय है, नहीं है समय। लेकिन ये प्रसंग है बहुत बड़े बड़े, ये विचार कर रहे थे, चर्चा चल रही थी, पूर्णमासी भी वहां आई एक बालक को लेकर, पूर्णमासी ने भी नंद महाराज से कहा कि आपको एक पुत्र होगा, उसके दर्शन के लिए मैं यहां आई हूं, तो नंद महाराज इत्यादि ने उनके लिए यमुना के कृष्णा के तट पर एक कुटिया बनाकर दिया, और कुटिया बनाने के पहले उन्होंने कहा कि देवी तुम बहुत ही तेजस्विनी तपस्विनी देवी हो, तुम साधारण स्त्री नहीं हो, तुम कौन हो, उन्होंने कहा मैं पूर्णमासी हूं, संदीप मुनि की मां हूं, तो आपके साथ ये नारद जैसा पुत्र कौन है, ये मेरा पोत्र है, संदीप मुनि का पुत्र मधुमंगल। ये प्रसंग बहुत भक्तों ने नहीं सुने, अगर आपके पास समय तो 2 घंटा लेकर सुना सकते हैं, ये प्रसंग ऐसा है। ये भाईंदर में जो अभी जन्माष्टमी का कथा हर बुधवार को होता था, उसमें ये सब प्रसंग आए थे। तो नंद महाराज ने जब पूर्णमासी से कहा कि हम कृष्णा के तट पर तुम्हारे लिए कुटिया बना देते, वहां रहो तुम, तो पूर्णमासी ने कहा कि आपके मुख से यमुना ना निकलकर कृष्णा क्यों निकल गया। निश्चित आपका कृष्ण पुत्र बनेगा, पूर्णमासी ने कहा, मैं ज्योतिष हूं, मैं ज्योतिष विद्या जानती हूं। पूर्णमासी ने कहा नहीं, बहुत सब प्रसन्न हुए। हालांकि नंद महाराज के सारे प्रयास करने के बाद भी उम्र ढल चुकी थी, कोई पुत्र नहीं था, और यहां नंद महाराज कहते हैं प्रजा शया निवृत्तस्य, आप इस आशा को भी छोड़ दिया था कि अब पुत्र होगा, लेकिन प्रजा यत संबद्ध, लेकिन आपको प्रजा प्राप्त हुआ। अब प्रश्न होता है प्रजा प्राप्त हुआ, प्रजा तो प्रजा, न कह रहे कि पुत्र प्राप्त हुआ न पुत्री प्राप्त, ऐसा क्यों नहीं कह रहे, प्रजा प्राप्त हुए ऐसा क्यों कह रहे हैं, कहना चाहिए ना आपको पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन वसुदेव जी सोच रहे हैं कि अगर मैं कहूं कि तुमको पुत्र प्राप्त हुआ तो ये झूठ होगा, उनको पुत्र कहां प्राप्त हुआ, मैं मेरा पुत्र रख कर आया हूं। हालांकि नंद महाराज को भी पुत्र हुआ था, लेकिन वो दृष्टिगोचर उनको नहीं हुआ। जब नंद महाराज वसुदेव जी लेकर गए कृष्ण को, तो यशोदा को भी पुत्र हुआ था कृष्ण, लेकिन उनको दृष्टिगोचर नहीं हुआ, योग माया ही दिखी। और वो जो वसुदेव नंदन थे, उनको जब रखा तो जिस प्रकार बादल में बिजली समाहित हो जाती है, इस प्रकार वो वसुदेव नंदन ब्रज नंदन में समाहित हो गए। लेकिन ये देखा नहीं, तो वसुदेव जी ने सोचा कि मैं कहूंगा कि पुत्र प्राप्त हुआ है तो शायद झूठ, अगर इनको पता होगा कि वसुदेव पुत्र रखकर गया है तो नंद महाराज सोचेंगे हमसे भी झूठ बोलता है, तो पुत्र भी नहीं कहा। और अगर पुत्री कह दें, पुत्री तो लाए, तो पुत्री कह दें तो वो सोचेगा विश्वास नहीं होगा इनको, क्योंकि पुत्री को तो मैं ले आया, ये देखे भी नहीं पुत्री को, तो विश्वास नहीं करेंगे। तो अब क्या किया जाए, तो प्रजा कह दिया, प्रजा में पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकता है। और वसुदेव जी ये भी जानना चाहते थे कि इनको कहीं पता तो नहीं है हमारा ये सब जो मैंने किया, रात को पुत्र रखा, बदली किया, इसका पता तो नहीं है नंद महाराज को, तो पता भी ना चले और बात भी, और लेकिन समाचार तो कुशल पूछना है ना। तो पूछा कि प्रजा आपको प्रजा प्राप्ति हुई, उम्र ढल चुकी थी बहुत, लेकिन फिर भी आपको जो प्रजा प्राप्ति हुई ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी। अब आज का श्लोक आता है, लेकिन आज का श्लोक की व्याख्या होना मुश्किल है, फिर क्लास देंगे तो इसका व्याख्या करेंगे। दृष्ट्वा संसार चक्रे अस्मिन्, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द, दृष्ट्या संसार चक्रे, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्यों संसार चक्रे अस्मिन्, ये जो संसार चक्र है ये बड़ा विकट है। संसार चक्र सुनिए, अभी संसार चक्र ठीक से नहीं समझ पाते थे, जैसे साइकिल होता है और उसका पहिया होता है और उसमें जो तार लगे रहते हैं, उस तार में कोई व्यक्ति समझो फंस जाए और साइकिल चल रहा है, तो वो क्या होता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर लपेटे में, संसार चक्र, ये संसार का चक्र भी ऐसा है। तो इस संसार चक्र में वर्तमान समय में हम बहुत दुख में थे और संसार चक्र जो है जन्म मृत्यु से भरा पड़ा है, और इसमें आपको देखना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। वर्तमान समय में आपको देखकर मेरा पुनर्भव, मेरा पुनः जन्म हुआ है, ये तो मेरा पुनर्जन्म है। कंस हमको बंदीगृह में डाल दिया था, हमारे पुत्रों को मार दिया था, वो देवकी को भी मारने वाला था, वो मुझे भी मार डालने वाला था, अगर पता चल गया होता कि वो रख के आए तो वो मुझको मार ही डालता था, कहां हम जीवित रहते थे। कंस को अगर पता चल गया होगा कि वसुदेव जी रखकर आए तो मार तो, लेकिन हम जी गए और जीकर आपको मैं देख रहा हूं, वास्तव में ये मेरा दूसरा जन्म है, पुनर्भव। उपलब्ध भवानध दुर्लभम प्रिय दर्शन, प्रियों का दर्शन, प्रियों का संग, इस विकटमय संसार चक्र में प्रियों का दर्शन, प्रियों का संग बहुत दुर्लभ है। ये संसार चक्र ही ऐसा है, भाग्य दुर्भाग्य के साथ चलता है, कर्म के साथ चलता है, इसलिए हमारे प्रिय बिछड़ जाते हैं। और ऐसी विकटता है इस संसार में कि न चाहते हुए भी कभी कभी अप्रियों के साथ रहना पड़ता है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग जो पूरा दिन सिनेमा का गीत सुनते हैं, मावा तमाकू खाते हैं और बिल्कुल भद्दा भद्दा हीरो की और हीरोइनों की और बात करते हैं, लेकिन कभी कभी भक्तों को ऐसे लोगों के साथ पूरा दिन रहना पड़ता है, ये भक्त के लिए बहुत दुख की बात होती है। लेकिन ये संसार चक्र ऐसा है कि कभी कभी ऐसे अप्रिय लोगों के साथ रहना पड़ता है, और प्रिय लोग जैसे आप लोग भक्त हैं, हम चाहते हैं वनमाली प्रभु का संग मिले, नटनागर प्रभु का संग मिले, भूगुर प्रभु के साथ पूरा दिन रहें, लेकिन नहीं हो पाता, खाली संडे को ही मिलते हैं, खाली भक्तों का संग संडे को ही होता है, और प्रिय दर्शन दुर्लभ, कभी कभी संडे को भी नहीं होता। भक्त चाहता है भक्तों के संग में रहना, हम नहीं जाना चाहते, चलो भक्तों के संग में बैठे हैं, कथा कीर्तन हो रहा है या चर्चा हो रहा है, तो भक्त जो है उसका इच्छा नहीं होता है कि उधर जाएं, या आज हमारे साले का शादी है तो उसमें जाएं, नहीं इच्छा होता है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादी में जाते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल कलयुग के सिवा कुछ नहीं, सिनेमा का गाना बेढंगा और वहां खड़ा रहना, ऐसा होता है कि अब यहां से कब मरें। ऐसे ऐसी स्थितियों में कभी कभी जाना पड़ता है, ये संसार चक्र ही ऐसा है कि प्रियों के साथ वियोग हो जाता है और अप्रियों के साथ रहना पड़ता है, बहुत विकट संसार चक्र। संसार चक्रे अस्मिन्, भगवान ने गीता में इसको द्वंद कहा, ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजता माम। द्वंद, अब द्वंद का व्याख्या तो नहीं करेंगे, समय बहुत हो चुका है, आपसे क्षमा चाहते हुए जैसे तैसे इसको सिकुड़ा है, तो जो कुछ भी कहा कुछ गलती या अतिशय हुई तो क्षमा मांगते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। और पुनः सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि आज भाईंदर में हरिनाम संकीर्तन है, तो कृपा करके आप सभी आइए। भाईंदर वेस्ट पुलिस चौकी के पास लोकमान्य तिलक बिल्डिंग है, बिल्कुल स्टेशन रोड पर, पुलिस चौकी से बगल में ही। तो 5 बजे आइए, 2 घंटे का संकीर्तन है और उसमें सब आप भाग। हरे कृष्ण। ओ हाँ, प्रश्न आपका, जब देवी ने, देवी प्रकट हुई और कंस को पता चला कि अरे ये तो देवकी साधारण नहीं है, ये तो महान है, तो वो घबरा गया, उनसे क्षमा मांगा, हाथाजोड़ी किया और फिर उनको मुक्त कर दिया। लेकिन रह रहे थे मथुरा में भी, अब मुक्त किया तो भी वो गोकुल नहीं जा सकते थे, कहीं पता चल गया तो, इसलिए वो ये एक अफसोस कह रहे हैं, अस्मिन संसार चक्रे दुर्लभ प्रिय दर्शनम। अब इसमें वो भी भाव है कि कृष्ण हमको बहुत प्रिय है, हमारा पुत्र बहुत प्रिय है, लेकिन अभी दुर्लभ प्रिय दर्शनम, ये आपका दर्शन हो गया ये भी बहुत है, अब उन प्रिय का दर्शन दुर्लभ। हरे कृष्ण। हाँ, श्राद्ध तो बनमाली प्रभु की आज्ञा है कि श्राद्ध के विषय में कुछ बताना चाहिए, तो भक्तों को विशेष कर जानना चाहिए। अभी हमारा जो माधवानंद प्रभु का पिछले रविवार को काउंसिल था, तो उसमें बहुत सुंदर माधवानंद प्रभु ने एक बात बताया कि कभी कभी हम लोग भक्त हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि हम चारों वर्णों से ऊपर हैं, हम मुक्त आत्मा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत हैं और इस वर्णाश्रम धर्म का पालन हर भक्त को करना चाहिए। और उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु रात को गंभीरा में बहुत रोते थे, सर को दीवारों से पीटते थे, कृष्ण प्रेम में इतने विह्वल थे कि ये दशा थी, और लेकिन वे सुबह आए और आकर उनसे कहा कि महाराज प्रताप रुद्र मिलना चाहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु, मैं सन्यासी हूँ, अरे अभी तो सन्यासी से उससे सभी वर्णाश्रम, सन्यासी भी वर्णाश्रम धर्म में आता है, तो अभी चैतन्य नहीं, मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी को बड़े धनी व्यक्तियों से भोगी व्यक्तियों से नहीं मिलना चाहिए, यहाँ वर्णाश्रम धर्म का पालन कर, उनके पालन की आवश्यकता, ये सब शिक्षा देने के लिए कि कोई कितना भी बड़ा भक्त बने उसको वर्णाश्रम का जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए। तो ये जो श्राद्ध करना ये भी वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत गृहस्थी का ये कर्तव्य है कि वे अपने पितरों के मंगल के लिए ये श्राद्ध करे, श्राद्ध अर्पण करे, और कुछ नहीं कर सकता तो भक्तों से कीर्तन करवाए और भक्तों को ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करें। जैसे नंद महाराज ने ब्राह्मणों को, बस यही जात संस्कार हुआ है वहां देखेंगे तो, ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। ब्राह्मण जब संतुष्ट होते हैं और उनके मुख से जब आशीर्वाद निकलता है तो हमारे पितरों का बहुत मंगल मंगल होता है। तो इस प्रकार है, इसमें बहुत प्रसंग छूट गए, ये भी प्रसंग था, महाराज प्रजन्य जब जा रहे हैं तो इन अपने पुत्रों को शिक्षा देकर गए थे, 5 पुत्रों को उपनंद नंद महाराज को बहुत शिक्षा दिया था कि अब मैं जा रहा हूँ, और एक श्लोक कोट किया था लेकिन समय नहीं है, शिक्षा दिया था कि ये संसार बहुत भयावह है और जन्म मृत्यु के चक्कर से भरा पड़ा है, जो भी अपने आत्मा का कल्याण चाहते हैं वास्तव में उनको भगवान के भक्तों की शरण लेनी चाहिए, जिससे उस कृष्ण के शरण प्राप्ति का मार्ग खुल सके, ये प्रजन्य ने शिक्षा दिया था उनको। तो उन ये जो 5 पुत्र थे उन्होंने इसको कैसे स्वीकार किया, बोले यही हमारे पिता के द्वारा हमको यही संपदा संपत्ति, उसको पिता की पितृ संपत्ति के रूप में उन्होंने ग्रहण किया, पिता को यह संपत्ति प्रदान करना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है भागवतम में और हमारे आचार्यों की टीका इतना सुंदर कि उन 5 भाइयों ने उस राज को पिता का संपत्ति स्वीकार किया ऐसा नहीं लिखा, उस पिता ने जो शिक्षा दिया कि भगवान के भक्तों का शरण ग्रहण करना चाहिए, जिससे कृष्ण के शरण के आश्रय का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इस शिक्षा को इन नंद उपनंद सुनंद महाराज ने अपने पिता के द्वारा दी गई संपत्ति के रूप में स्वीकार किया। कितना सुंदर शिक्षा, कितना सुंदर शिक्षा। तो अपने पिताओं को भी ये संस्कार संपत्ति देना चाहिए। तो हमको भी आने वाला समय बहुत विकट है, हमारे लिए हमारे पुत्र लोग ये लोग क्या करेंगे इसके लिए बहुत बड़ा एक संशय विषय बना है। लेकिन उनको भी ये शिक्षा देने के लिए हमको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए कि हमारे पुत्र भी ये सीखें, ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो सब श्राद्ध के समय में यहाँ ब्रह्म भोज दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, हैं? और गरुड़ध्वज प्रभु, वनमाली प्रभु, कृष्ण शिष्य प्रभु, किसी भी मंदिर के वरिष्ठ भक्त से मिलकर आप ये सेवा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, गौर निताय की, ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, हरिनाम सहता की, निताय गौर।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज शाम को विश्व हरिनाम सप्ताह मनाया जाएगा, महेंद्र जो है हरिनाम संकीर्तन में ठीक 5 बजे से लोग महेंद्र में हरिनाम संकीर्तन में उपस्थित रहे। और श्राद्ध पक्ष पुनः बताऊंगा, आप सब भागवत पढ़ते हैं तो सब सातवें स्कंद में नारद मुनि बताते हैं सर ग्रंथों का कर्तव्य है कि श्राद्ध पक्ष के विधि का पालन करें। आप भागवत प्रेमियों से निवेदन है भागवत के इस नियम का पालन करते हुए अपने गृहस्थ धर्म का नियम को पालन करें। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद की जय।